लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, महामारी कोविड-19 विश्व के 212 देशों में अपना पैर पसार चुका है और इसे समाप्त करने के लिए दुनिया का हर देश प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को एक वर्चुअल प्रेस वार्ता के दौरान कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि इस विकराल चुनौती से निपटने के लिए यूएन प्रणाली 3 मुख्य आयामों पर ध्यान केंद्रित कर रही है: वैश्विक युद्ध विराम को लागू करना, सबसे नाजुक हालात में रह रहे लोगों की मदद सुनिश्चित करना और आर्थिक और सामाजिक पुनर्बहाली की योजना तैयार करना। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण अब तक 39,18,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2,70,740 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। महासचिव ने कोविड-19 के कारण बदहाल हालत और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होने पर शोक जताते हुए कहा कि विकासशील देशों के साथ पर्याप्त एकजुटता नहीं दिखाई जा रही है, जो चिंता का विषय है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
I am particularly worried about the lack of sufficient solidarity with developing countries, both in equipping them to respond to the COVID-19 pandemic, which risks spreading like wildfire, and to address the dramatic economic and social impacts.
महासचिव अंतोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि मैं खासतौर से विकासशील देशों के साथ एकजुटता के अभाव को लेकर चिंतित हूं, उन्हें महामारी का मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाने की कमी को लेकर, जिसके कारण महामारी जंगल की आग की तरह फैल सकती है और महामारी के व्यापक आर्थिक व सामाजिक प्रभावों का हल निकालने में कमी को लेकर भी। जैसे जैसे वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, संयुक्त राष्ट्र जिंदगियां बचाने, अकाल से बचने, तकलीफें कम करने व पुनर्बहाली की योजना के साथ पूरी तरह सक्रिय है। हमारी आवाज स्पष्ट रही है, जिसमें एकजुटता, एकता और उम्मीद की पुकार शामिल रही है। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। यूएन प्रमुख ने कहा कि इस साझा दुश्मन से लड़ाई के लिए वैश्विक युद्ध विराम की अपील की गई है। साथ ही $2 अरब की वैश्विक मानवीय राहत योजना शुरू हुई है, जिसके जरिए सबसे निर्बलों, शरणार्थियों व घरेलू विस्थापितों की मदद की जाएगी। इसके लिए दानदाताओं ने प्रस्तावित योजना की आधी धनराशि का संकल्प ले लिया है। महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली द्वारा किए जा रहे प्रयासों में 3 मुख्य आयाम रेखांकित किए: वैश्विक युद्ध विराम को हासिल करना, विकट आर्थिक हालात में फंसे लोगों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करना और हालात में बेहतरी के लिए योजना पर तत्काल काम शुरू करना। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम की अपील को व्यापक समर्थन मिला है। 114 देशों की सरकारों, क्षेत्रीय संगठनों, धार्मिक नेताओं और सभी क्षेत्रों के 200 से ज्यादा नागरिक समाज समूहों ने इसका समर्थन किया है और इनमें 16 हथियारबंद संगठन भी शामिल हैं। लेकिन उन्होंने माना कि अविश्वास अब भी कायम है और युद्ध विराम को प्रभावी ढंग से लागू कर पाने की दिशा में आगे बढ़ना कठिन है। इस दिशा में प्रगति के लिए यूएन के विशेष प्रतिनिधि और दूत अथक प्रयास कर रहे हैं, ताकि मंशा को वास्तविकता के धरातल पर उतारा जा सके।
विश्वव्यापी महामारी के कारण स्कूल भी बंद हैं। इससे करोड़ों बच्चे प्रभावित हुए हैं, विशेषकर वे बच्चे जो स्कूल पर मिलने वाले मिड डे मील पर निर्भर थे। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने सरकारों से 37 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान रखने की अपील की, साथ ही एक नई दिशा निर्देश जारी की है, जो बताते हैं कि तालाबंदी से प्रभावित 1 अरब से ज्यादा बच्चों के लिए स्कूलों को फिर से किस तरह खोला जा सकता है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
यूएन एजेंसियों ने सचेत किया है कि व्यापक स्तर पर शिक्षा केंद्रों के बंद होने से बच्चों की शिक्षा व उनके कल्याण के लिए अभूतपूर्व खतरा पैदा हुआ है, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले उन बच्चों के लिए जो अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व पोषण के लिए स्कूलों में मिलने वाली सहायता पर निर्भर हैं। ताज़ा दिशा निर्देश संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने विश्व बैंक के साथ मिलकर तैयार किए हैं। ये संगठन वैश्विक शिक्षा गठबंधन में शामिल है, जो शिक्षा के लिए अवसरों को प्रोत्साहन देने के वास्ते मार्च 2020 में स्थापित किया गया था। इन गाइडलाइंस में राष्ट्रीय और स्थानीय प्रशासन के लिए ऐसे व्यावहारिक कदमों का उल्लेख है जिनके जरिए स्कूलों में बच्चों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सकती है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने कहा कि जो बच्चे स्कूलों से वंचित रह जाते हैं उन्हें बढ़ती असमानता, खराब स्वास्थ्य, हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। बच्चे जितना लंबे समय तक स्कूल से बाहर रहते हैं उनके वापस आने की संभावना उतनी ही कम होती है। अगर हमने सुरक्षित माहौल में स्कूल फिर से खोलने को प्राथमिकता नहीं बनाया तो शिक्षा में प्रगति की दिशा को भारी झटका लगने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इससे पहले सरकारों से ऐसे 37 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य व पोषण संबंधी जरूरतों का ध्यान रखे जाने की अपील की थी, जिसके अभाव में उनके भविष्य पर हानिकारक असर होगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बीजली ने बताया कि करोड़ों बच्चों के लिए स्कूलों में मिलने वाला आहार ही उनका दिन में एकमात्र भोजन है। इसके बिना वे भूखे रह जाएंगे, उनके बीमार पड़ने, स्कूलों से बाहर हो जाने और उनके गरीबी से निकल पाने का एक अच्छा मौका खो जाने का जोखिम है।
महामारी कोविड-19 और मानवता के अस्तित्व पर मंडराता जलवायु संकट, इन दोनों व्यापक चुनौतियों से निपटने का एकमात्र विश्वसनीय रास्ता बहुपक्षवाद पर आधारित निडर, दूरगामी और सहयोगपूर्ण नेतृत्व में निहित है। यूएन महासचिव ने गत मंगलवार को बर्लिन में जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित पीटर्सबर्ग जलवायु अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में ये बात कही। उन्होंने जिंदगियों पर मंडराते खतरों, पंगु हो रहे व्यवसायों और क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं की पृष्ठभूमि में सचेत किया। मौजूदा हालात में टिकाऊ विकास लक्ष्यों के लिए भी जोखिम पैदा हो गया है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
यूएन महासचिव ने बर्लिन में मंगलवार को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद को संबोधित करते हुए सहन क्षमता मजबूत बनाने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक काल से पहले के समय की तुलना में तापमान में मौजूदा बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन में कटौती, अनुकूल प्रयासों व वित्तीय संसाधनों का इंतजाम करने के लिए महत्वाकांक्षा बढ़ाने की पैरवी की है। ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के उपायों के तहत सभी देशों को वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करनी होगी। विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं, लेकिन उसका सबसे अधिक असर उन्हीं पर दिखाई दे रहा है। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से उबरने व हालात बहाल किए जाने की प्रक्रिया को एक अवसर के रूप में देखा जाना होगा, ताकि दुनिया को एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जा सके जहां जलवायु परिवर्तन से निपटना, पर्यावरण की रक्षा करना, जैव विविधता को संरक्षित करना और दीर्घ काल के लिए मानवता का स्वास्थ्य व सुरक्षा सुनिश्चित करना संभव हो। कम कार्बन आधारित और जलवायु सहनशील आर्थिक वृद्धि के जरिए हम एक ऐसी दुनिया सृजित कर सकते हैं जो स्वच्छ, हरित, सुरक्षित, न्यायोजित और सभी के लिए समृद्ध हो। इस क्रम में उन्होंने जलवायु संबंधी 6 उपाय पेश किए हैं, जिन्हें अपनाकर देश हालात बहाली की दिशा में बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की तरह ग्रीन हाउस गैसें भी सीमाओं को नहीं पहचानती और अलग थलग रहना एक ऐसा जाल है जिसमें किसी भी देश को अपने दम पर सफलता नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से ही कार्रवाई के लिए एक साझा फ्रेमवर्क है, टिकाऊ विकास का 2030 एजेंडा और जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता। उन्होंने कहा कि दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ मिलकर कुल वैश्विक उत्सर्जन में 80% मात्रा के लिए जिम्मेदार हैं।
कोविड-19 पर आज की हुई चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे महबूब खान। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
हे प्रभु तू है जग का विधाता जो सभी जीवों पर करता दया। पग उजड़ा तुम बिन प्रभु जीवन बिखरा।
ये जीवन मेरा पग पग उजड़ा तुम बिन प्रभु जीवन बिखरा।
सबका उद्धारक जग का सितारा तू ही मेरा जीवन सहारा।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित संत मर्था प्रेरितिक आवास के प्रार्थनालय में शुक्रवार को ख्रीस्त त्याग के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट दिवस के उपलक्ष्य में उन सब स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों को याद किया जो लोगों के कल्याण के लिए अनुपम सेवाएं अर्पित करते हैं। संत पापा ने कहा, आज का दिवस रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट को समर्पित विश्व दिवस है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इन योग्य संस्थानों में काम करते हैं, ताकि प्रभु ईश्वर उनके भले कर्मों को आशीष दें तथा उन्हें सदैव अपनी अनुकंपा में बनाए रखें। ख्रीस्त त्याग प्रवचन में संत पापा ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि प्रभु की सांत्वना उनके सामीप्य और सत्य एवं आशा में आगे बढ़ने से मिलती है। संत योहन रचित सुसमाचार के उस पाठ पर संत पापा ने चिंतन किया जिसमें अंतिम भोजन कक्ष में येसु अपने शिष्यों से कहते हैं, ईश्वर में विश्वास रखो तथा मुझ में भी विश्वास करो, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम्हारे लिए भी जगह सुरक्षित होगी। संत पापा ने कहा, इन शब्दों से दुख की घड़ी में भी प्रभु येसु ख्रीस्त अपने शिष्यों को सांत्वना देते और उनमें ढारस बंधाते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि दुख के क्षणों में हम भी अन्यों को सांत्वना देते हैं, किंतु हमारी सांत्वना को सच्ची सांत्वना होनी चाहिए। वह ऊपरी सांत्वना न हो बल्कि दिल से निकली सच्ची सांत्वना हो, उसी तरह जिस प्रकार प्रभु येसु ने अपने शिष्यों को दी थी। उन्होंने कहा कि प्रभु येसु ने शिष्यों के पास रहकर अपने सामीप्य द्वारा उन्हें सच्ची सांत्वना प्रदान की थी। इसी प्रकार हमारी सांत्वना भी खोखले शब्द मात्र न हो बल्कि सत्य और आशा से परिपूर्ण रहे। अंत में संत पापा ने प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर से हम अनुग्रह की याचना करें ताकि प्रभु द्वारा सांत्वना ग्रहण करना सीख सकें। प्रभु की सांत्वना सत्य है, वह कोई धोखा या भ्रम नहीं है। प्रभु की सांत्वना कोई एनेस्थीसिया नहीं है, अपितु वह हमारे समीप है, सत्य है, जो हमारे लिए आशा के द्वार खोल देती है। मुंबई के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ऑज़वाल्ड ग्रेशियस ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में हुई गैस दुर्घटनाओं में मारे गए कम से कम 11 लोगों की मौत पर गहन शोक व्यक्त कर कहा है कि गैस लीक की घटनाओं ने कोरोना वायरस महामारी से संघर्षरत भारत पर और अधिक दबाव डाल दिया है। कोविड महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ी बाधा तब उत्पन्न हुई जब देश में एक के बाद एक 3 औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई। पहली दुर्घटना में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दक्षिण कोरियाई फैक्ट्री एलजी पॉलीमर्स प्लांट से गुरुवार सुबह केमिकल गैस लीक होने के कारण कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है तथा लगभग 350 लोगों को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा है। इस फैक्ट्री में पॉलिस्टरीन उत्पादन का काम होता रहा है। दूसरी दुर्घटना में तमिलनाडु के कुड्डालोर के निकटवर्ती एक सरकारी थर्मल प्लांट में बॉयलर विस्फोट में 8 लोग घायल हो गए। तीसरी दुर्घटना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में हुई, जब एक कागज बनाने वाली फैक्ट्री से लीक हुई जहरीली गैस के संपर्क में आ जाने की वजह से 7 लोग घायल हो गए। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट के गैस रिसाव के कारण आसपास के गांवों को खाली कर दिया गया है, इसलिए कि सैकड़ों लोग तथा पशु जहरीली गैस में श्वास लेने के कारण सड़कों के किनारे बेहोश होने लगे थे। विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर श्री जाना गुमाला के अनुसार गुरुवार तड़के प्लांट से जब गैस लीक हुई तब गांव के लोग सो रहे थे। उन्होंने बताया कि सैकड़ों लोगों के भीतर सांस के जरिए गैस चली गई है, इससे लोग या तो बेहोशी की हालत में हैं या फिर इन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है। इराक में बुधवार को संगठित नई सरकार के प्रति कार्डिनल लुईस साको ने इराक के भविष्य हेतु आशा जताई है। खलदेई ख्रिस्तियों के कैथोलिक धर्माधिपति बेबीलोन के प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल लुईस राफाएल साको ने वैटिकन न्यूज से बातचीत में कहा कि अब संपूर्ण इराक के लिए आशा का संचार हुआ है। इराक ने बुधवार को घोषणा की कि उसने एक नई सरकार का गठन कर लिया है। विगत नवंबर माह में अब्दुल महदी के इस्तीफा देने के 6 महीनों बाद नई सरकार का गठन किया जा सका। नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी हैं, जो इराक के खुफिया प्रमुख और पत्रकार रह चुके हैं। कार्डिनल साको ने कहा कि नए प्रधानमंत्री का भाषण और उनकी भावी योजनाओं के बारे में सुनने के बाद यह आशा जागृत हुई है। नए प्रधानमंत्री के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि वे ईमानदार हैं, इराक का भला चाहते हैं और उन्होंने योग्य मंत्रियों को चुना है, हालांकि कुछ को अभी भी नियुक्त किया जाना बाकी है। इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कि अभी भी देश में लड़ाका दल अनियंत्रित हैं तथा समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, कार्डिनल साको ने कहा कि इस समय इराक की प्राथमिकता है एकता और एकात्मता। उन्होंने कहा कि नई सरकार को समर्थन देना आवश्यक है ताकि वह अपनी योजनाओं को लागू कर सके। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कार्डिनल साको ने स्वीकार किया कि यह बहुत सीमित है और इराक के लिए एक महान चुनौती है, तथापि उन्होंने कहा इस समय पहली प्राथमिकता है सभी इराकियों के लिए सुरक्षा, शांति और समानता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल की पटरियों पर पैदल चलकर अपने घरों को लौटने वाले 16 अप्रवासी मजदूरों की एक रेल दुर्घटना में शुक्रवार को मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के अनुसार कोविड महामारी के कारण बंद हुई रेल सर्विस के बाद अप्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की ओर पैदल लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार लगभग 5:30 बजे हुई। बताया जाता है कि रेल दुर्घटना के शिकार हुए सभी मजदूर औरंगाबाद के पास जालना की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। अधिकारियों के अनुसार सभी मजदूर शुक्रवार को औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से छूटने वाली विशेष ट्रेन में सवार होने के लिए जालना से रात को रवाना हुए थे। थकावट के कारण वे पटरियों पर सो गए थे, तभी एक मालगाड़ी इनके ऊपर से गुजर गई। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि रेल दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से वे आहत हैं। उन्होंने संपूर्ण देश में फंसे सैकड़ों श्रमिकों को सहायता देने का भी वादा किया है। इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।